आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी विपदा का संहार भाग एक। निराश होकर ब्योमकेश ने अखबार मेरी गोद में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा। कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। इससे तो अच्छा है कि प्रेस वाले अखबार के पृष्ठों को खाली छोड़ दें, कम से कम छपाई का खर्चा तो बचेगा। मुझे उसकी झुंझलाहट बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों, क्या कुछ भी नहीं है अखबार में? तुम ही तो कहते हो कि दुनिया की सारी खबरें केवल वर्गीकृत विज्ञापनों में होती हैं। ब्योमकेश ने मायूसी में एक चैलेट सुलगाया और बोला, नहीं कुछ नहीं, व्यक्तिगत सूचनाओं में भी कुछ नहीं है। किसी ने विज्ञापन दिया है कि ये विधवा से शादी करना चाहती है। विधवा ही क्यों, जबकि कुंवारी लड़कियों की कतार लगी हुई है। जरूर उसके मन में छोर बैठा है। बात तो सही लगती है, और भी तो कुछ होगा। एक बीमा कंपनी ने बड़ा इश्तिहार छापा है, वो संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करेगी, और अगर किसी कारण से उनमें से एक की मौत हो जाती है तो बीमा की सारी रकम जीवित साथी को मिलेगी। ये बीमा कंपनियां जीवन को इतना कष्टमय बना सकती है, यानी आदमी शांति से मर भी नहीं पाएगा। ऐसा क्या है, इसमें भी तुम्हें कोई गुण दोष दिखाई देता है? बीमा कंपनी, अरे बीमा कंपनी को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला, पर क्या ये लोगों के दिमागों में अपराध का बीज बोना जैसा नहीं है? मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ तो समझ में आए। ब्योमकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हताशा से भरा निश्वास छोड़ा, अपने पैरों को मेज पर रखकर छत की ओर देखते हुए चैलेट का कश खींचने लगा। सर्दियों का मौसम था, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। कलकत्ता वासी छुट्टियां मनाने शहर छोड़कर दूरस्थ स्थलों के लिए निकल गए थे, और दूसरे शहरों के वासी कलकत्ता घूमने आ गए थे। ये कहानी तब की है जब ब्योमकेश का विवाह नहीं हुआ था। अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुकूल हम दोनों सुबह की चाय पर अखबार पढ़ रहे थे। 3 महीने की लंबी अवधि बिल्कुल खाली गुजरी थी। खाली बैठे बैठे ब्योमकेश जैसे मजबूत व्यक्ति में भी एक प्रकार की ऊब और ढल्लापन बैठ गया था। दिन भर खालीपन के दिन लुढ़कते जा रहे थे। हर एक दिन अखबार देखते ही शायद कुछ मिल जाए, पर सब व्यर्थ। अखबारों में जो भी भरा होता हमारे लिए बेकार था। दिन बीतने के साथ मन भी बोझल होने लगा। मैं कल्पना ही कर सकता था कि सोचने की ऊर्जा के अभाव में ब्योमकेश का मस्तिष्क कितना भूखा होगा। मैंने इस विषय में ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इसकी चर्चा करूंगा तो शायद कहीं ये ना सोच बैठे कि मैं उस पर निठल्ले का दोष मढ़ रहा हूं। आज सुबह भी उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे दुख हुआ। यह सोचकर कि जिस अंधी गली में वो फंसा बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए वो खुद ही योग्य है। मैंने खालीपन की चर्चा छोड़ दी और चुपचाप अखबार के पन्नों में खो गया। सर्दियों में कलकत्ता सम्मेलनों और सेमिनारों का गढ़ बन जाता है। इस साल भी सम्मेलनों की बाढ़ थी। अखबार वालों को अपने पन्ने भरने का भरपूर मसाला मिल रहा था। तरह तरह की खबरें, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विस्तृत समाचार। मैंने देखा इस समय कोई 6 से 7 सम्मेलन चल रहे थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी। बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर अपने सार गर्भित धुआंधार भाषणों से दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे थे। उनकी खबरों को पढ़ने से उत्पन्न जो सेकंड हैंड प्रदूषण मेरा मस्तिष्क झेल रहा है, वो निश्चित रूप से मस्तिष्क पर एक कलौंच छोड़ जाएगा। मैं अक्सर सोचा करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक काम करने से ज्यादा बोलते क्यों हैं? वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा उसका भाषण उतना ही बड़ा होगा। अगर कोई विमान या स्टीम इंजन का आविष्कार करे और धुआंधार लेक्चर दे तो उसको सुनने का बनता है, पर जब तुम एक कीड़ा या उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते तो तुम्हारी लफाजी कौन सुनता है? सबकी सब बकवास है। साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम देखकर कुछ दिलचस्पी हुई। नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉक्टर देव कुमार सरकार का। उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था। ऐसा नहीं कि बंगाल के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाषणों से सम्मेलन को लाभान्वित ना किया हो, पर प्रोफेसर देव कुमार सरकार के नाम पर नजर इसलिए पड़ी कि वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर से 2 मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है। हालांकि हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी, लेकिन हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे जो हमारे यहां आया करता था। वो दरअसल में ब्योमकेश का बड़ा प्रशंसक था। 18-19 साल का युवक हाबुल कॉलेज का छात्र था। वो आता और बड़ी श्रद्धा से ब्योमकेश को ताकता रहता था। और ब्योमकेश मुस्कुराकर मन ही मन उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर लेता। कभी कभी हम हाबुल को चाय पर भी बुलाते, उस समय उसके रोमांच का कोई अंत ना होता। इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा। एक सरसरी निगाह डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने सोचा अगर मैं उसे जोर से पढ़कर ब्योमकेश को सुनाऊं तो शायद ब्योमकेश के बोझिल मस्तिष्क को कुछ राहत पहुंचे। ये सोचकर मैं बोला, ए सुनो, हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है। ब्योमकेश ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और ना ही अपनी नजरों को छत की बीमों से हटाया। फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र नहीं बन सकता। यह आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार और उत्पादक रिसर्च करने की क्षमता नहीं है, और इसी को भारत के स्वावलंबी ना हो पाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। इसका सबूत है हमारा गौरवमय इतिहास। यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतशील था जिसके सूत्रों के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और सुदूर क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के चार आधार स्तंभ हैं: गणित, खगोल विद्या, चिकित्सा और मूर्तिकला। इन चारों का जनक भारत ही है। फिर भी आज के युग में यह तर्क व्यर्थ ही कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता बहस की ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कारण कुछ और हैं, जिसने हमारी योग्यता की ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उन्हें साधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब कभी धन की जरूरत होती तो वो राजकीय कोष से प्राप्त हो जाता था। राजकीय कोष की अकूत संपदा उनकी खोज और आविष्कारों के लिए हरदम उपलब्ध रहती थी। आर्थिक साधनों की चिंताओं से मुक्त रहकर ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने शोध में लगाते थे, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दशा कैसी है? सरकारें वैज्ञानिक शोध को प्रश्रय देने से कतराती हैं, उधर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम धनी वैभवशाली वर्ग भी अनुसंधान और शोध की योजनाओं में खास दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसी स्थिति में हमें सीमित साधनों में बंधकर अपना कार्य करना पड़ता है। ये साधक भी कुछ अनुदान अथवा कुछ विश्वविद्यालयों के आर्थिक सहयोग से एकत्र धन पर आधारित रहते हैं। इसलिए हमारी कार्यक्षमता और सफलता भी उसी के अनुरूप नियंत्रित रहती है। हमारी स्थिति ठीक उस चूहे की भांति है जो एक हाथी को अपनी पीठ पर ढो नहीं सकता। हम साधनों के अभाव में बड़े आविष्कार करने के लायक नहीं रहते। एक अभावग्रस्त मस्तिष्क विराट की कल्पना कैसे कर सकता है? इस सब के बावजूद मेरा अटूट विश्वास है कि यदि हम अपने मस्तिष्क को आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखकर अपने शोध और अनुसंधान कार्यों में प्रयत्नरत रहें तो कोई कारण नहीं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़ जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभावग्रस्त हैं। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक चुपचाप बैठे हैं, बल्कि इन विपरीत स्थितियों के बावजूद उन्होंने अब तक जो भी शोध अनुसंधान और आविष्कार किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो इन छोटे छोटे वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोगों और आविष्कारों का हिसाब किताब रखती हो? ये ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी प्रयोगशालाओं में ही ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे देखकर सब वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने आविष्कार को दुनिया की नजर से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं। वो जानते हैं कि वो अकेले हैं, कोई उनकी सहायता के लिए आने वाला नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति में किसी को अपनी खोज या आविष्कार बताने में भी भय खाते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि जिस क्षण किसी को उनके आविष्कार का पता चल गया वह उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने पर ले लेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे चोरों की कमी नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, हमें आर्थिक सहायता दो। हमारे पास शोध और अनुसंधान के लिए अनियंत्रित साधन हो और वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों का श्रेय देने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम चाहते हैं बस। प्रोफेसर के ज्ञान की चर्चा में यह भूल ही गया कि कोई और भी इसे सुन रहा है। ब्योमकेश ने एकाएक बीच में काट दिया।
बस इतना काफी है।
क्या हुआ?
हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो भी चाहिए।
ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैंने कहा,
यही तो दोस्त, फेल होने के बहाने अनेक हैं। देव कुमार बाबू का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी काम चोरी की इस प्रवृत्ति से भरी नहीं है।
ब्योमकेश उदास होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वो बोला,
हाबुल देखने में एक सीधा साधा लड़का दिखाई देता है, पर बुद्धिमान है। उसके पिता होने के नाते देव कुमार बाबू कैसे ऐसी फजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिरते हैं?
ये जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान लड़के का पिता मेधावी हो। क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो? मैंने पूछा।
मैं शायद नहीं मिला हूं और उनसे मिलने की लालसा भी नहीं हुई, लेकिन सुना है कि उन्होंने दूसरी शादी की है।
इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। और ब्योमकेश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। घड़ी ने 8:30 बजाए। मुझे कुछ सोच नहीं रहा था तो मैं पुत्ती राम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने जा ही रहा था कि ब्योमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया।
मुझे सीढ़ियों से पदचाप की आहट सुनाई दी है, कोई आ रहा है।
उसने कान फिर से लगाए और हाबुल बोलते हुए फिर निराश मन से लेट गया।
हाबुल ही है, क्यों आया है? लगता है जल्दी में है।
एक क्षण बाद दरवाजा खोलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी, आंखों में भय था, जैसे कोई विभत्स घटना देखी हो। वो कोई आकर्षक लड़का नहीं था। मोटी थुलथुल देह पर गोल चेहरा और हल्की घास जैसी दाढ़ी। वो व्याकुल दिखाई दिया। मैंने उठकर पूछा, हे हाबुल, क्या हुआ? लेकिन हाबुल पागल की तरह ब्योमकेश को देख रहा था। मेरी बात शायद उसने नहीं सुनी थी। वो उठा और लड़खड़ाकर ब्योमकेश के नजदीक पहुंचा और बड़बड़ाया,
ब्योमकेश दा, सर्वनाश, मेरी बहन एकाएक मर गई।
और वो जोर जोर से रोने लगा। ब्योमकेश ने हाबुल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया। कुछ देर वो वैसे ही रोता रहा। अनायास विभत्स कांड से लड़का अपना होश खो बैठा था। हम लोगों को अब तक ये नहीं मालूम था कि हाबुल की बहन भी है। उसने अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। मैंने इतना ही सुना था कि हाबुल की माँ के मरने के बाद देव कुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली है और हाबुल और उसकी नई माँ के बीच अच्छा रिश्ता नहीं। थोड़ी देर में हाबुल कुछ शांत हुआ और बताने लगा,
पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में वो उसकी बहन उसकी माँ है। आज सुबह रोज की तरह पढ़ने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। घड़ी में 8 घंटे बजने के बाद उसे माँ की चीख सुनाई दी। वो नीचे भागा। उसने देखा कि माँ रसोई के बाहर खड़ी जोर जोर से रो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है, इसलिए मैंने रसोई में घुसकर देखा। उसकी बहन रेखा स्टोव की ओर झुकी खड़ी। उसने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखा तो पता चला कि वो मर चुकी है। उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी और हाथ पैर अकड़ गए थे।
इतना कहकर हाबुल फिर से ससकने लगा।
मैं क्या करूं ब्योमकेश दा, पिताजी यहां नहीं है, इसलिए मैं आपके पास भागा आया हूं। रेखा मर गई है। हे भगवान, ये कैसे हो गया ब्योमकेश दा?
हाबुल की दशा देखकर मुझे भी दया आ गई। ब्योमकेश ने हाबुल के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हाबुल, अपने आप को संभालो भाई, संकट में हिम्मत नहीं हारते। अच्छा, ये बताओ कि रेखा को क्या कोई बीमारी थी, कोई दिल की बीमारी?
मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ था।
क्या उम्र थी?
16 साल। वो मेरे से 2 वर्ष छोटी थी।
क्या उसे हाल ही में बेरी या कोई अन्य बीमारी हुई हो?
नहीं।
ब्योमकेश ने कुछ देर सोचा फिर बोला, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जब तक मैं खुद ना देख लूं क्या हुआ है, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम अपने पिता को तार देकर तुरंत आने को कहो। लेकिन रुको, अभी जरूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर रुद्रा तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं। तब चलो आओ जीत। जल्दी ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए। कहानी में आगे क्या होता है ये सुनिए अगले भाग में, यानी भाग 2 में।